हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। कृषा के युग के विला में फंसने की बात आदित्य सिंघानिया को भी पता चल चुकी थी। सारा ने जब उन्हें समझाया तो उन्होंने कृषा पर यकीन कर लिया था कि कृषा वहाँ जानबूझकर नहीं गई हैं। कृषा से कॉन्टैक्ट करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो सारा ने युग के विला में जाने के बारे में सोचा। उसने माइक को इस बारे में तैयारी करने के बारे में कह दिया था। वहीं दूसरी तरफ कृषा हया की मदद से अब युग के फ्लोर पर काफ़ी कंफर्टेबल होकर रह रही थी। उसे अपना एक पर्सनल रूम भी मिल गया था। सुबह नाश्ता करने के बाद कृषा रूम में सो गई थी। वैसे भी रात को उसको ठीक से नींद नहीं आई। शाम के 4 बजे के करीब कृषा नींद से उठी। रूम से बाहर आने के लिए कृषा ने हल्का सा दरवाज़ा खोला और फिर इधर उधर देखा। युग उसे कहीं भी नज़र नहीं आया तो कृषा धीमे कदमों से चलकर किचन एरिया की तरफ जाने लगी। वो किचन में पहुंची ही थी कि उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो युग था जो किसी से कॉल पर बात करते हुए उस तरफ आ रहा था। युग ने कॉल पर सर्द लहजे में कहा, सर्जरी की तैयारी कर ली है ना? मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है डॉक्टर। आज ही अर्जुन सिंघानिया की एक किडनी निकालकर उसे किसी को डोनेट करना या डस्टबिन में फेंकना, आई डोंट ब्लडी केयर। आज के आज सर्जरी हो जानी चाहिए। युग इस वक्त अपने ही विला के हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात कर रहा था। उसकी बातों से कृषा समझ गई थी कि युग के इरादे क्या हैं। युग किचन में ही आया था। उसे देखकर कृषा छुप गई और युग की तरफ देखकर अपने मन में कहा, तुम इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो युग? अर्जुन भैया और मैं कभी भी इस दुनिया का हिस्सा नहीं थे, फिर भी हम दोनों को सजा मिली। मुझे लगा तुम तो इस बात को समझोगे। तुम कभी किसी इनोसेंट को इन्वॉल्व नहीं करते थे, लेकिन आप क्या हो गया? क्यों तुम अर्जुन भैया के साथ ये सब कर रहे हो? कृषा को युग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। युग ने अपने लिए कॉफ़ी तैयार की और फिर वहीं पर बैठकर पीने लगा। उसने किसी और को कॉल पर कनेक्ट किया। युग ने कॉल पर कहा, मैं सेल की तरफ आ रहा हूँ, कुछ देर में अर्जुन सिंघानिया को सर्जरी के लिए ले जाया जाएगा। उससे पहले मुझे उससे बात करनी है, उसे सेल से बाहर स्पेशल रूम में लेकर जाओ। स्पेशल रूम से युग का मतलब यहाँ टॉर्चर रूम से था, जो कृषा को समझ नहीं आया। स्पेशल सेल में तो वो पहले भी जा चुकी थी, लेकिन ये स्पेशल रूम उसने पहली बार सुना था। कृषा कन्फ्यूजन से युग की तरफ देख रही थी। कृषा ने अपने मन में कहा, मुझे कुछ भी करके भाई को बचाना होगा। युग उनकी किडनी नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं इसके पीछे कैसे जाऊं? यहाँ तो ढेर सारे सिक्योरिटी कैमरा लगे हुए हैं। अगर गलती से भी मैं किसी में कैप्चर हो गई तो दादू का सारा प्लान बिगड़ जाएगा और वो मेरी जान ले लेंगे, फिर युग भी मुझे बचा नहीं पाएगा। कृषा युग के पीछे जाने का रास्ता सोच रही थी, तभी युग किचन से बाहर निकला और उसने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। कृषा अंदर फंस के रह गई थी। अजीब मुसीबत है, अब मैं यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकती, गुस्से में कृषा ने अपना हाथ दीवार पर मारते हुए कहा। फिर वो उठकर बाहर आई तो उसे एक खिड़की दिखाई दे रही थी। वहाँ से बाहर देखा जा सकता था। कृषा वहाँ खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड्स की लोकेशन देख रही थी। विला के एंट्रेंस एरिया से लेकर आगे तक पूरी दूर में सिक्योरिटी गार्ड्स फैले हुए थे। उनके हाथ में बड़ी सी गन थी। कृषा ने देखा लगभग 5 मिनट बाद एक आदमी अर्जुन को घसीटते हुए स्पेशल सेल से बाहर लेकर किसी और जगह पर लेकर जा रहा था। वो विला के दूसरी तरफ बना हुआ आउटहाउस था, जहां अर्जुन को ले जाया जा रहा था। अर्जुन की हालत देखकर कृषा की आंखें नम होने लगी। तो वहीं उसके जाने के लगभग 5 मिनट बाद युग भी वहां पहुंच चुका था। अंदर क्या हो रहा था, कृषा से वो छुपा हुआ नहीं था। युग अंदर अर्जुन के पास पहुंचा। अर्जुन को एक चेयर पर बिठाया गया था। उसकी बेड़ियां निकाल दी गई थी, इस वजह से उसके हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा था। अर्जुन को इस वक्त बांधा नहीं गया था। उसने युग की तरफ नजर उठाकर देखा तो युग के फेस पर क्रूअल स्माइल थी। अचानक युग ने अपने चेहरे के भाव सर्द किए और अर्जुन का चेहरा दबाते हुए कहा, तो तुम नहीं बताओगे कि उन्होंने मेरी क्रिश को कहाँ रखा है? बोलते हुए युग ने अर्जुन का चेहरा छोड़ दिया ताकि वो उसकी बात का जवाब दे सके। वहीं युग की बातों से अर्जुन समझ गया था कि उसे अब तक कृषा के बारे में पता नहीं चला है। उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी और धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं नहीं जानता हूँ कि कृषा कहाँ है। अगर पता होता तब भी तुम्हें नहीं बताता। जैसे ही अर्जुन की बात खत्म हुई, उसके गाल पर एक छन्नाटेदार तमाचा पड़ा। युग अर्जुन के चेहरे पर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए धीमी लेकिन सर्द आवाज में कहा, पता है अब तक मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहा था, लेकिन अब और नहीं। मुझे लगा तुम अपनी जुबान खोल दोगे। लगता है अब सही वक्त आ गया है तुम्हें ये बताने के लिए कि ये डेविल क्या कर सकता है। युग की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी। वो उसी लहजे में बोला, तुम मेरे साथ अच्छे तरीके से पेश आ रहे थे युग राणा, शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन मैं कुछ नहीं भूला हूँ। किडनैप करने के 15 दिनों तक तुमने मुझे बर्फ के ऊपर रखा था, जब तक कि मेरी हालत मरने वाली नहीं हो गई। मेरा ट्रीटमेंट करवाकर मुझे 1 महीने तक इतना पीटा गया कि मेरे दोनों पैर और एक हाथ की बोन क्रेक हो गई थी।
उसकी ट्रीटमेंट के बाद में तुमने मुझे दिन रात ड्रग्स के भारी डिब्बे उठाने के काम में लगाया। उससे भी तुम्हारा दिल नहीं भरा तो तुमने मुझे ठंडे पानी में ऑक्सीजन के साथ रखा ताकि मैं मर भी ना सकूं तो जी भी ना पाऊं। भूल गए क्या? और याद दिलाऊं कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है? ये तो बस तुम्हारे टॉर्चर का ब्रीफ था, बोलते हुए अर्जुन की आवाज में डांट था। वो डर्ट जो उसने पिछले 2.5 साल में झेला था, युग ने उसके साथ बहुत बुरा टॉर्चर किया था जिसके निशान आज भी उसके शरीर पर थे। युग ने अर्जुन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके फेस पर ईविल स्माइल थी, मानो इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उसे कोई फर्क ना पड़ा हो। तुम सच में डेविल हो, बिल्कुल उतने ही निर्दयी जिसे किसी के दर्द से फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ किया, फिर भी ये सब कुछ सुनने के बाद पछतावे के बजाय तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट है, अर्जुन ने हैरानी से कहा। उसने देखा अचानक युग के फेस की स्माइल गायब हो गई। उसने कोल्ड वॉइस में कहा, ये दर्द उस दर्द के आगे कुछ नहीं है जो मैंने अपनी क्रिश के दूर होने पर झेला है। अभी तुम्हें दर्द का पूरा एहसास नहीं हुआ है। मैंने कहा ना, जब तक कि तुम्हारी रूह तक से आवाज नहीं आ जाती कि तुमने मेरी क्रिश को मुझसे दूर करके कितनी बड़ी गलती की है, तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही तड़पाता रहूंगा और मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। युग जो कह रहा था वो सच था और अर्जुन भी इस बात को जानता था। उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी और खुद को मजबूत किया। वैसे भी वो पिछले कुछ सालों से यही झेल रहा था तो कुछ हद तक उसे आदत भी पड़ गई थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, कर लो जो करना है, ज्यादा से ज्यादा मारोगे पीटोगे या काम करवाओगे, मैं तैयार हूँ। कुछ उससे भी बड़ा अर्जुन सिंघानिया, अगले एक महीने में मुझे कृषा मिली तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसे हाल में कि तुम अपने पैरों पर भी खड़े ना हो पाओ, युग ने जवाब दिया और वहां से जाने लगा। अर्जुन अभी भी कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देख रहा था। युग ने उसे भले की पूरी बात ना बताई हो, लेकिन जिस हिसाब से वो बात कर रहा था उससे उसके गूज़बम्स उठने लगे। युग अपनी बात कहकर वहां से जाने लगा, तभी अर्जुन पीछे से चिल्लाकर बोला, जवाब दो युगराना, तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ? मैं अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़ा हो सकता, मुझे जवाब दो।
अर्जुन की तरफ देखकर युग के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। वो उसकी तरफ पलटा और वापस अर्जुन के पास आते हुए बोला, तुम तो डॉक्टर हो अर्जुन सिंघानिया, मुझसे बेहतर तुम्हें इनके बारे में पता होगा। चलो फिर भी इतना ही पूछ रहे हो तो बता देता हूँ, खुद को तैयार कर लो, कुछ देर बाद तुम्हारी सर्जरी है। तुम्हारी एक किडनी निकाल दी जाएगी, 10 दिन बाद तुम्हारी दूसरी सर्जरी होगी जहां तुम्हारे लिवर का 70% हिस्सा भी किसी और को डोनेट कर दूंगा, और उसके 10 दिन बाद तुम्हारी आंखें डोनेट होंगी, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। देखो जाते जाते कितनी भलाई का काम कर रहे हो। युग जैसे जैसे बोल रहा था अर्जुन के चेहरे पर डर के गहरे भाव थे। अर्जुन को डरता हुआ देखकर युग को मजा आ रहा था। वो आगे बोला, पता है अभी अभी मेरे दिमाग में एक नया प्लान आया है। क्या हो जो तुम वापस सिंघानिया फैमिली में पहुंचने के बजाय किसी फुटपाथ पर व्हीलचेयर पर पड़े हुए मिलो? भीख मांगने की प्रैक्टिस है ना तुम्हें? अपनी बात खत्म करके युग खतरनाक हंसी हंसा। इतने सालों में अर्जुन को कभी युग से डर नहीं लगा। उसे हर बार यही लगता था कि युग उसे कितना भी टॉर्चर कर ले, लेकिन जान से नहीं मारेगा। आज पहली बार युग की बातें सुनकर अर्जुन को डर लग रहा था। अर्जुन जोर से चिल्लाकर बोला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मेरा यकीन मानो। मुझे नहीं पता कृषा कहाँ है, मैं तो खुद तुम्हारे साथ हूँ। पता है इतने सालों में तुमने एक भी ढंग की बात नहीं बताई। सोच रहा हूँ तुम्हारी जबान भी काट कर फेंक दूँ, एक हाथ भी काट देता हूँ, ताकि लोगों को तुम पर दया आए और आसानी से भीख मिल जाए। क्या ख्याल है अर्जुन सिंघानिया? युग ने अर्जुन के अंदर का डर पकड़ लिया था और वो उसे हथियार बनाकर अर्जुन के खिलाफ यूज कर रहा था। वहीं अर्जुन भी जानता था कि युग ऐसा कर सकता था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो ना में सिर हिलाकर बोला, मेरा यकीन करो, दादू ने मुझे प्लान में इन्वॉल्व जरूर किया था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया था कि वो कृषा को लेकर कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान भटका कर रखूं। उसके बाद क्या अर्जुन सिंघानिया, आगे बोलो। ध्यान भटकाने के बाद तुम्हें एक जगह पर जाना था, वो कौन सी जगह थी? युग ने अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़ते हुए पूछा। वो समझ गया था कि अगर उसने थोड़ी देर अर्जुन को और डराया तो शायद वो डर के मारे सब कुछ उगल दे, लेकिन अर्जुन सच में कुछ नहीं जानता था, इस वजह से वो चुप हो गया। अर्जुन ने कुछ पल की चुप्पी के बाद सुबकते हुए कहा, प्लीज मेरे साथ ये सब मत करो, अगर कृषा को पता चला तो वो तुमसे नफरत करने लगेगी। तुम क्या चाहते हो, जब तुम कृषा को वापस ढूंढो तो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार के बजाय नफरत हो? अर्जुन की बात सुनकर युग ने उसे सर्द निगाहों से देखा और फिर चिल्लाकर कहा, नफरत तो वो मुझे तब भी करेगी जब मैं सिंघानिया फैमिली के हर एक शख्स को खत्म कर दूंगा, और आई स्वेयर मैं ऐसा करके रहूंगा। जिस दिन आदित्य सिंघानिया मेरे सामने आया वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। पूरी सिंघानिया फैमिली को बर्बाद नहीं कर दिया तो मेरा नाम युगराना नहीं। युग अब अर्जुन पर और टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था, उसे जितना बताना था वो बता चुका था। युग ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और वहां से जाने के लिए पलटा। रूम के दरवाजे पर एक गार्ड खड़ा था जिसे देखकर युग ने तेज आवाज में कहा था जिससे अर्जुन को सुनाई दे सके। वो बोला, मैं हॉस्पिटल में हूँ और इसे वहां लेकर आओ, इसकी सर्जरी बिना किसी एनेस्थीसिया के होगी, हर एक दर्द को इसे फील करना होगा। अपनी बात कहकर युग वहां से चला गया।
एक गार्ड अर्जुन के पास आया और इसे पकड़कर ले जाने लगा। अर्जुन को इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अगर युग ने उसे हॉस्पिटल लाने के लिए कहा है तो वो समझ गया कि युग अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। कुछ ही देर में गार्ड ने अर्जुन को लेकर विला के हॉस्पिटल में पहुंचा। कृषा को अंदर क्या हुआ उसके बारे में तो कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन उसने युग को उसे आउट हाउस से बाहर निकलते देखा और उनके पीछे पीछे सिक्योरिटी गार्ड अर्जुन को पकड़कर हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहे थे। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे युग के सामने ही क्यों न जाना पड़े। युग भैया के साथ ऐसा नहीं कर सकता, कृषा ने खुद से कहा। उसकी आंखों में आंसू थे और अर्जुन के लिए वो युग के सामने तक जाने के लिए तैयार थी। अगले ही पल कृषा के सामने आदित्य सिंघानिया का चेहरा आया। उसे ट्रेनिंग के दौरान आदित्य सिंघानिया के साथ की हुई कुछ बातें याद आ रही थी, जहां आदित्य ने गुस्से में कृषा का चेहरा पड़ा हुआ था और वो उस पर चिल्लाकर बोले, गौर से सुनो कृषा सिंघानिया, अगर तुम्हारी आंखों के सामने युग राणा मुझे भी गोली क्यों न मार रहा हो, लेकिन तुमने मेरा प्लान खराब किया या मेरी लेगेसी को मुझे वापस नहीं लौटाया तो मैं सब बर्बाद कर दूंगा। आदित्य की बात याद आते ही कृषा की आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए बोली, मुझे नफरत है अपनी जिंदगी से। क्या मुझे नॉर्मल लाइफ बिताने का हक नहीं है, जहां मैं अपने हस्बैंड के साथ प्यार से रह सकती थी? लेकिन यहां सब कुछ नॉर्मल क्यों नहीं है दादू? भाड़ में गया आपका प्लान और ट्रेनिंग, मैं अपने भाई के साथ गलत नहीं होने दे सकती, जिन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया हो, कृषा गुस्से में बोली। और फिर उसने आखिरी डिसीजन यही लिया कि वो युग के सामने चली जाएगी, इस बहाने वो अर्जुन को बचा सकेगी।